بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین، السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیریت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے شام میں دہشت گردوں کی صفاقی اور بربریت، عام شہریوں پر کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال، کیمیاوی ہتھیاروں کو روکنے کی ذمہ داری امریکہ کی۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، 2 سال قبل مارچ میں شام کے خلاف جس ڈرامے، سینیریو یا سازش کا آغاز ہوا تھا اور جس مقصد کے تحت یہ سارے منصوبے اور کھیل کھیلے گئے تھے، اب ایک ایک کر کے وہ مقصد واضح، نمایاں، برملا اور آشکارا ہو رہے ہیں۔ شام کے عوام کا مطالبہ یا کسی بھی ملک کے عوام کا مطالبہ، اگر وہ اصلاحات کے حق میں ہو، جمہوریت کے حق میں ہو، اپنے قانونی حقوق کے حق میں ہو، تو جائز، برحق اور قانونی ہوتا ہے، اور شام کے عوام بھی اس سے مستثنی نہیں۔ چنانچہ جب شام میں مظاہرے شروع ہوئے تھے، اس کے ابتدائی مہینوں میں ہی شام کے صدر بشار اسد نے اصلاحات کا اعلان کیا تھا، ریفرنڈم کرایا تھا، پارلیمانی انتخابات کا انعقاد کرایا تھا اور عوام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک ایک کر کے ان کے جائز، قانونی اور برحق مطالبات کو پورے کریں گے، اور اس سلسلے میں انہوں نے اصلاحات کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ اصلاحات بھی نافذ کر دی تھیں۔ لیکن دوسری طرف مغربی ملکوں اور علاقے میں اس کے عرب ملکوں اور ترکی اور اسرائیل نے جو شام کو یا شام کی حکومت کو صہیونیت مخالف محاذ میں پیش پیش دیکھ رہے تھے، سامراج مخالف محاذ میں پیش پیش دیکھ رہے تھے، اس حکومت کو انہوں نے برسر اقتدار رہنا گوارا نہ سمجھا اور شام کے عوام کے مطالبات کو مسلح دہشت گردوں کی مسلح کارروائیوں میں تبدیل کر دیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے غیر ملکی دہشت گردوں کی شام کے اندر بھرمار ہو گئی۔ نہ صرف دہشت گردوں کی بلکہ دہشت گردوں کے لیے پیسوں اور ہتھیاروں اور اسلحوں اور گولہ بارود کی بھی بھرمار ہو گئی۔ ہوا یہ کہ ابتدائی مہینوں میں شام کی حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے امریکہ، اس کے اتحادیوں اور بعض عرب حکومتوں نے یہ بہانہ بنایا کہ اگر شام کی حکومت نے کیمیاوی ہتھیار عام شہریوں پر استعمال کیے تو ہم فوجی مداخلت کرنے پر شام کے اندر مجبور ہو جائیں گے، جبکہ شام کی عوام بار بار یہ کہتی رہی کہ نہ تو ہم کیمیاوی ہتھیار رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنے ملک کے عوام کے خلاف استعمال کریں گے۔ اگر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شام میں سرگرم دہشت گردوں کو کیمیاوی مواد فراہم کر کے ان کے ذریعے عام شہریوں پر کیمیاوی مواد استعمال کرانے کے بعد یہ بہانہ کریں گے کہ شام کی حکومت اور شام کی فوج نے عام شہریوں پر یہ کیمیاوی مواد یا ہتھیار استعمال کیے ہیں، اور اس طرح سے وہ شام میں فوجی مداخلت کا بہانہ تلاش کریں گے۔ اور آج 2 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد جو خدشہ تھا اور جو اندیشہ تھا وہ ثابت ہوا کہ ابھی گزشتہ منگل کو دہشت گردوں نے شام کے شمالی شہر حلب میں عام شہریوں، بے گناہ اور معصوم انسانوں کے خلاف کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال کیا، جس میں درجنوں افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے، جس میں مرد، خواتین، بچے اور بوڑھے سبھی شامل ہیں۔ شام کی حکومت نے فوری طور پر مطالبہ کیا کہ اس حملے کی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائے، اور اقوام متحدہ نے بھی اس بات کا اعلان کیا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جیسا کہ روس نے کہا ہے کہ شام میں کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال سے متعلق آزادانہ تحقیقات کی راہ میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیمیاوی ہتھیار جو کہ مختلف بین الاقوامی کنونشنوں کے مطابق ان کا استعمال کہیں بھی، کسی بھی وقت، حتیٰ جنگ میں بھی حرام اور غیر قانونی، حرام یعنی ہم تو شریعت بار سے کریں لیکن کنونشنوں کے مطابق غیر قانونی ہے، تو جب یہ استعمال غیر قانونی ہے تو فرانس، برطانیہ اور امریکہ اس کی آزادانہ تحقیقات کی راہ میں کیوں رکاوٹ بن رہے ہیں؟ یہی نہیں، منگل کو اس طرح کا حادثہ ہوا اور پھر جمعرات کو دمشق میں مسجد الایمان میں سینکڑوں کی تعداد میں جب نمازی موجود تھے تو دہشت گردوں نے بم کا دھماکہ کر کے 50 کے قریب نمازی اور اس مسجد کے معروف پیش نماز اور شام کے بزرگ اہل سنت عالم دین علامہ شیخ محمد سعید البوتی کو شہید کر دیا۔ لیکن دہشت گردی کے اتنے بڑے واقعے کی نہ تو امریکہ کی طرف سے مذمت کی گئی اور نہ ہی امریکہ کے اتحادی عرب ملکوں کی طرف سے۔ بہرحال اب شام کس مرحلے پر ہے اور اس طرح کی بربریت اور دہشت گردوں کی صفاقی میں اچانک کیوں تیزی آئی، اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں۔ چلتے ہیں سیدھے اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں عالمی امور اور خاص طور پر مشرق وسطی کے امور کے ماہر اور ممتاز دانشور جناب ثاقب اکبر صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
ثاقب اکبر صاحب، جو کھیل کھیلا جا رہا تھا اور جس کھیل کو ایک انتہا تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی تھی، یعنی کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال اور اس بہانے شام کی حکومت پر دباؤ ڈالنے کا حربہ، بالآخر وہ دن آ ہی گیا اور منگل کو دہشت گردوں نے، جنہیں امریکہ، اسرائیل، ترکی اور عرب حکومتوں کی حمایت حاصل ہے، انہوں نے بے گناہ شہریوں کے خلاف کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ اب جب کہ کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال ہو گیا ہے اور یہ بات صاف ہے کہ دہشت گردوں نے کیا، تو کیا امریکہ جو یہ ڈھنڈورا پیٹتا رہا کہ اگر اس طرح کا کیمیاوی ہتھیار استعمال کیا گیا شام کی حکومت کے ذریعے تو ہم فوجی مداخلت پہ ناگزیر ہوں گے، اب کیا موقف ہوگا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا اس واقعے کے تعلق سے؟
میرا خیال یہ ہے جی کہ خاصے اس وقت خود یورپ کے اندر بھی امریکہ دباؤ میں ہے اور باقی دنیا میں بھی امریکہ خاصے دباؤ میں ہے۔ یو این او میں بات جس انداز سے شام لے کے گیا ہے، اس سے بالکل ان کا جو حربہ تھا بالکل عین ان کے خلاف ایک سامنے آ گیا ہے۔ آپ کے ناظرین جانتے ہوں گے کہ یورپی یونین کے اجلاس میں برطانیہ اور فرانس نے بہت کوشش کی کسی طریقے سے قائل کرنے کی، اپنے باقی اتحادیوں کو، 27 ممالک کے نمائندے وہاں پہ موجود تھے، قائل کرنے کی کوشش کی کہ شام کے اوپر جو شام کے بارے میں جو پابندی ہے کہ شامی کے اسلحہ فراہم کرنے کے حوالے سے، اس پابندی کو اٹھا لیا جائے۔ اور ان کے پاس یعنی دلیل شروع سے ہی وہ یہی دیتے چلے آ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے چونکہ اسلحہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ شروع میں یہ بات بھی کی گئی تھی کہ چونکہ کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے کا امکان ہے حکومت شام کی طرف سے، تو اس لیے ضروری ہے کہ یورپی یونین جو ہے وہ اجازت دے کسی نہ کسی طریقے سے کہ یورپ کے یہ ممالک جو ہیں یہ ناٹو فورسز کے ذریعے سے جو ہے وہ اس میں داخل ہو جائیں اور شام میں جو وہ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں اپنے مقاصد کے حوالے سے وہ کھیل سکیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو گارڈین نے رپورٹ شائع کی ہے کہ جو سروے کیا گیا ہے امریکہ کے اندر اور برطانیہ کے اندر، اور لوگوں سے پوچھا گیا ہے کہ کیا شام میں جو اس وقت مسلح گروہ ہیں کیا ان کی حمایت میں جو ہے وہاں پہ افواج داخل کر لی جائیں یا شام میں یہ ممالک جو ہے وہ فوجی کاروائی کریں، تو امریکہ اور برطانیہ کے عوام کی اکثریت نے اس پروپوزل کی جو ہے وہ مخالفت کی ہے۔ اب یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اندر بھی وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکے، حالانکہ ہمسایہ ممالک جو امریکہ کے حامی ہیں شام کے ارد گرد، جن میں خاص طور پہ اردن، سعودی عرب اور پھر قطر، پھر اپنا ترکی کا نام بڑی آسانی سے لیا جا سکتا ہے، اور پھر شام کی بھی حمایت جو ہے وہ یا پشت پناہی وہاں سرگرم عمل گروہوں کو جو ہے وہ حاصل ہے، اس کے باوجود ابھی تک وہ کوئی کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور یہ جو اہم بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا بہانہ نہیں آ سکا کہ وہ شامی حکومت کے خلاف جو ہے وہ عوام کو، یعنی دنیا کے عوام کو اور خاص طور پہ یورپ اور امریکہ کے عوام کو بھی قائل کر سکیں۔ تو یہ جو پوزیشن ہے ان کو، یہ بہت بڑی ان کے لیے شکست ہے۔ پھر جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، یہ بھی ابھی جس واقعے کا آپ نے ذکر کیا، मस्जिद उल इमाम के जो है वो एक बहुत बड़े आलिम जो वहाँ पे शहीद हुए और बाकी नमाजी जो शहीद हुए, ये तो बिल्कुल वैसी कार्रवाइयाँ हैं जो हम पाकिस्तान में देखते हैं। इससे इसके अलावा जिस तरह की कार्रवाइयाँ हमने मिस्र में देखी हैं या बाकी ममालिक में जो एक इंतहा पसंद ग्रोह जिसको इन्हीं अपना रुजत पसंद और बादशाहतों की हमायत हासिल है, वैसे ही लोग जो हैं वो वहाँ पे बिल्कुल बिल्ली थैले से बाहर आ जाने वाली बात है। इसमें जो और बड़ी अहम पेशरफ्त है जिसकी वजह से आलमी राय आमा को अमेरिका या बरतानिया और फ्रांस अपने मकासद के लिए हमवार नहीं कर पा रहा, वो लाशें मिल गई हैं उन लोगों तुर्की के नेशनल्स की, लीबिया के नेशनल्स की और उर्दन के नेशनल्स की, दीगर ममालिक के लोग इसका मतलब है खुद सरजमीन शाम के अंदर आके जो है वो इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो इस सारे सिनेरियो में मेरा ख्याल यह है कि एक बहुत बड़ी आलमी पैमाने पर जहाँ पे अमेरिका और उनके हवारियों को शिकस्त हुई है, यूरोपीय यूनियन ने इजाज़त नहीं दी, फिर यूएनओ में मसला ले गए हैं और यूएनओ को अब इजाज़त नहीं
जी
मिल रही चूंकि वहाँ पे अमेरिका की अंदर सलामती कौंसिल से इजाज़त लेना ज़रूरी है और इसके तहकीकात के लिए जो कमेटी बनाने के लिए, तो यूएनओ के अंदर खुद उल्टा उन पर जिस तरह का दबाव पड़ गया है। तो मेरा ख्याल यह है कि इसके असरात जरूर अंदर शाम के अंदर जो इस वक्त हुकूमत भी है और जो लोग चाहते हैं कि ये दहशतगर्दी का सिलसिला खत्म हो जाए, ये यकीनन वो लोग जो है वो मुस्तहकम होंगे और ये जो मुखालिफ अनासर हैं जो बिल्कुल बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, जिन्होंने पहले यूएनओ की इस तरह की कोफी अन्नान की पेशरफ्त को और बाकी जो यूएनओ के नुमाइंदे हैं जिन्होंने निगोशिएशन का रास्ते के लिए जोर डाला उनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और अब जिस तरह की यानी उन्होंने डेवलपमेंट्स की और एक एक नाम निहाद एक हुकूमत उन्होंने तश्कील दी, तो ये सारे उनके हरबे जो है वो नाकाम होते चले जा रहे हैं। इस वक्त जो खास तौर पे मुझे आप के नाजरीन को ये मतवजे करना है कि तुर्की का मसला लोगों के लिए बहुत ही हैरानकुन है कि तुर्की इतना आगे बढ़कर क्यों शाम मुखालिफ और जो अंदर सरगर्म दहशतगर्द ग्रोह हैं वो जो हैं उनकी हमायत वो क्यों कर रहा है और इस्तंबोल में क्यों इजलास किया गया है। ये जो नाम निहाद जो है वो अबूरी हुकूमत जो है वो जिया जिलावतन हुकूमत कायम करने के लिए, मेरा ख्याल है जब तक तुर्की नाटो का रुकन है और अमेरिका की सरपरस्ती में ये जो फौजी इत्तेहाद मौजूद है और उसकी अफवाज
जी
खुद मौजूद हैं तुर्की के अंदर, ये सवाल लोगों को अजीब नहीं ये बात लगनी चाहिए कि तुर्की दर हकीकत नाटो के मकासद जो है वो पूरे कर रहा है और नाटो को जो है वो चूंकि तुर्की उसका पार्ट एंड पार्शल है, जब तक वो पीछे नहीं हटता उस वक्त तक जो है नाटो से पीछे नहीं हटता। हमें तुर्की के ये सारे इकदाम हम समझते हैं कि ये नाटो की डिक्टेशन पर हैं। दूसरा ये कि तुर्की फिर एक दफा कोशां है कि उसको यूरोपीय यूनियन में जो है वो रुकनियत मिल जाए, रुकनियत तो उसको नहीं मिलेगी लेकिन तुर्की के लिए ये बहुत बड़ी रुसवाई की बात है। अब मेरा
जी
ख्याल ये है कि ये सारी डेवलपमेंट्स जो हैं आखिरकार अपना सूर्या के शाम के अवाम जो हैं उनको जरूर एक इस्तेहकाम हासिल होगा और ये जो मुखालिफ अनासिर हैं इनके लिए जरूर ये हौसला शिकनी के पैगाम आते हैं सारे
बहुत
के
शुक्रिया
सारे।
आपका। मैं भी राजू का, चलते हैं लंदन स्टूडियो जहां पर मौजूद हैं आलमी उमूर के माहिर प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम अस्सलाम।
बात अभी तुर्की की हो गई शाम के तनाजुर में। आप देखें कि अभी पिछले पीर को इस्तांबुल में इजलास हुआ तुर्की के जो मुखालिफ बाज़ ग्रुप्स हैं उनका, और उसमें एक ऐसे शख्स को जिसने पूरी ज़िंदगी अपनी अमेरिका में गुजारी और शामी नजाद अमेरिकी बाशिंदा है, उसको तुर्की की जलावतन हुकूमत, शाम की जलावतन हुकूमत या शाम की अबूरी हुकूमत का वज़ीर आज़म बनाया गया। दूसरी तरफ वो शाम मुखालिफ ग्रोहों के इत्तेहाद के सरबराह, जो सबसे बड़ा इत्तेहाद है मुखालिफिन का, उसके सरबराह माज़ अल ख़तीब जिनका नाम सबसे ज़्यादा आता है मुखालिफिन में, उन्होंने इस इजलास की सख्त मुखालफत की और ख़बरदार किया कि तुर्की जो है वो शाम के अंदर फौजी मुहिम जोई और मुदाखलत से बाज रहे। क्या आप समझते हैं कि अब तुर्की बाकायदा तरीके से शाम के अंदर फौजी मुदाखलत के लिए पर तौल रहा है या ऐसा वो करने की कोशिश कर रहा है या कर सकेगा आपके ख्याल में?
मेरा ख्याल तो नहीं कर पाएगा क्योंकि तुर्की की खुद बहुत सीरियत मुश्किलात हैं। एक तो कुर्द जो हैं वो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं और काफ़ी ने उनको नुकसान भी पहुंचाया है। दूसरी तरफ जो लोग हैं तुर्की के वो इससे बहुत नाला है, खासकर बॉर्डर एरिया में जितने सीरियन आ गए हैं उनकी वजह से वहाँ के लोग जो हैं उस इलाके के वो बहुत नाला है। और मुल्क के अंदर इसकी कोई हिमायत नहीं है कि तुर्की जो है वो शाम में मदाखलत करे, बल्कि बड़ी सख्त मुखालफत है तुर्की अंदर, तो तुर्की नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात यह है कि उनको ये भी पता है कि और ताकतें जो हैं मुल्क दुनिया की वो इस उसको उनको उनकी हिमायत नहीं करेंगी, और यूनाइटेड नेशन में से कोई उनको इजाज़त नहीं मिलेगी कि वो ये कर सकें। तो मेरा ख्याल है तुर्की कुछ नहीं कर सकता। देखिए बात सारी यह है कि ईरान, सीरिया, हजबुल्ला, हमास और दूसरी ताकतें अमेरिका के पूरी तरह से अमेरिका और इसराइल की पूरी मुसल्लत होने से रोकने में खड़ी हुई हैं। उनका काम यह था कि सीरिया को अगर कमज़ोर कर दिया जाए और वहाँ उनके मनमानी हुकूमत आ जाए, फिर वो ये जो लिंक है ईरान, सीरिया, हिजबुल्लाह और दूसरों के, वो तोड़ दिया जाएगा। इससे इसराइल को सबसे बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा। ये सारी उनकी स्ट्रेटेजी है, और उस स्ट्रेटजी में वो जो उनकी वो जिला वतन नाम निहाद जिला वतन हुकूमत जो बनाई हुई है उन्होंने, वो तो सब अमेरिका की मैन्युफैक्चर्ड है, अमेरिका की बनाई हुई है। उसमें अमेरिका के जो शहरी हैं और जो वहाँ के शहरी हैं वो उनके प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, और वो सारे लोग जो हैं उसकी काउंसिल के ऊपर वो बड़े इशरत से 5 स्टार होटलों में ठहरते हैं और इधर उधर सफ़र करते रहते हैं। तो वो तो अमेरिका की बनाई हुई चीज़ है, उसको लोग दुनिया जानती भी है उनको जो है। लेकिन दूसरी तरफ जो है ये दहशतगर्द ये 4 ग्रुपों में हैं, और ये 4 ग्रुप जो हैं उनके वो ज़्यादातर उनमें जो लोग हैं वो सीरियन नहीं है बल्कि बाहर से आए हुए हैं। और ये जो सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं ये सारे बाहर के, एक भी अभी तक ये नहीं अभी तक सबूत नहीं मिला है कि एक भी सीरियन ने ये की हो सुसाइड बॉम्बिंग। सारे जो हैं सऊदी है, कतारी है, इधर उधर के आए हुए लोग जो हैं शिद्दत पसंद जो है वो कर रहे हैं काम जो है।
बहुत शुक्रिया, मैं फिर आ जाऊंगा प्रोफेसर साहब जी। साकिब अकबर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हलब में गुज़िश्ता मंगल को जो कीमियावी हथियार दहशतगर्दों ने आम शहरियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, जब शाम की हुकूमत, रूस और दीगर जो ईरान समेत ममालिक हैं वो इसकी आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं, तो जैसा कि रूस ने कहा है कि अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया आज़ादाना तहकीकात की राह में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, आपके ख्याल में क्यों?
मेरा ख्याल ये है कि बिल्कुल जैसे मैंने पहले इशारा किया, उनका प्लान इससे बिल्कुल बरक्स हो गया है, यानी इसका उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया वाली बात है। यानी उन्होंने ये कोशिश की थी कि कीमियावी हथियारों का जो मौजू है उसका सहारा लेकर शाम की हुकूमत को टॉपल करने का जो है वो जवाब पैदा किया जाए, उसमें डायरेक्टली फौजी मुदाखलत तो अब भी कर रहे हैं, एक इंटरनेशनली एक उनको ज़रा सा सलामती कौंसिल की तरफ से एक इजाज़त चाहिए थी, एक इंटरनेशनल छतरी उनको चाहिए, बाज़ुकात वो उसके बगैर भी आ जाते हैं, जैसा कि इराक के अंदर वो आ गए। लेकिन यहाँ पे चूंकि चाइना और वहाँ पे चाइना और रशिया ने खामोशी एक तरह से इख्तियार की थी, यहाँ पे रशिया और चाइना ने चूँकि खामोशी अपनी तोड़ दी है, तो अब उनको एक तरफ थोड़ी सी एक आलमी सतह पर एक सहारा सा चाहिए था कोई ऐसी करारदाद, तो वो उन्होंने जो है वो उससे तो वो महरूम रहे। अब वो कोशां थे कि किसी ना किसी तरीके से ये साबित कर सकें, तो मेरा ख्याल है हथियार फराहम तो उन्होंने जो कीमियावी थे मुखालफीन को इसीलिए किए थे कि किसी ना किसी तरीके से उसको इस्तेमाल करके तो गवर्नमेंट ऑफ सीरिया पर जो है वो इल्ज़ाम लगाया जा सके। लेकिन अब इस वक्त सीरिया ने जिस तेज़ रफ्तारी से इस वाक़े के बाद यूएनओ में मूव किया है, इससे खासा जो है वो अमेरिका मुश्किल में पड़ गया, इसलिए कि अब अगर वो तहकीकात की इजाज़त देता है तो सीरिया गवर्नमेंट तो बिल्कुल मुतमईन है, उसको तो पता है कि मुखालफीन ने इसको इस्तेमाल किया है, और अगर ये बात साबित हो जाए तो वो जो फौजी मुदाखलत के बहाने तलाश कर रहा है या तराशने की कोशिश कर रहा है वो सारे के सारे नाकाम होते जो है वो अमेरिका को नजर आते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका जो है वो, बल्कि अगर कोई करारदाद इस सिलसिले में पेश हो भी गई तो बईद नहीं है कि अमेरिका उसको वीटो कर दे किसी ना किसी बहाने से। तो अमेरिका इस सिलसिले में खासी उसको खिफत का आलमी सतह पर जो है वो सामना करना पड़ रहा है, और इसलिए मैं नहीं समझता कि वो इसकी जो है वो इजाजत देगा।
बहुत
इससे
शुक्रिया,
एक
बहुत
और उसको
शुक्रिया।
मुश्किल पेश आ जाएगी कि जिस तरह से वो प्रोपेगेंडा करके अपने आवाम को एक तरह से मुतमईन करने की कोशिश कर रहा है कि हम
जी
जो
बहुत शुक्रिया, मैं फिर आ जाऊंगा
मुखालफीन
आपकी
की
खिदमत
जो है
में।
वो,
साथ अकबर साहब चलते हैं इस वक्त लाहौर, जहां पर टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर और सरकर्दा तर्ज निगार प्रोफेसर फारूक हसनाज साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
जी। वालेकुम अस्सलाम।
फारूक हसनाज साहब, 2011 मार्च से अब तक अमेरिका और उसके जेरे असर जो ममालिक और इत्तेहादी हैं वो ये प्रोपेगंडा कर रहे हैं कि शाम में अवाम हुकूमत के खिलाफ बरसरे पैकार हैं और अपने बुनियादी हक के लिए लड़ रहे हैं। ये कैसे अवाम हैं कि जो अपने ही साथियों और अपने ही शहरियों के खिलाफ कीमियावी हथियार इस्तेमाल करते हैं, दमिश्क और मुतअद्दिद शहरों में बमों के धमाके करते हैं। अभी जुमेरात को दमिश्क में उन्होंने मस्जिदुल ईमान में 50 नमाजियों को दहशतगर्दाना खुदकुश धमाका करके शहीद किया, उसके इमाम को आलिम अहले सुन्नत जनाब शेख सईद अल बूती साहब को शहीद किया। ये कौन से अवाम है, किस मुल्क के अवाम जमहूरी हकूक के लिए इस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ अंजाम देते हैं?
ये असल में बात यह है कि आपने बजा कहा कि अपने ही अवाम को नुकसान पहुंचाना और बेगुनाह जानों का ज़िया करना, ये तो मिशन से परे हटने की बात है। क्योंकि अगर तो कोई एजेंडा है और अगर कोई प्रोग्राम है तो वो उस प्रोग्राम को आप लोगों में तशवीश की करते हैं, लोगों के आगे पेश करते हैं और फिर आप कोशिश करते हैं कि अवाम आपके साथ ज्यादा से ज्यादा मिले। क्योंकि बहरहाल पूरी जो कुव्वत है वो लोगों की ही होती है, और लोगों के मुख्तलिफ तबके जो हैं वो जब एक झंडे तले जमा हो जाए तो फिर हुकूमतों के लिए हुकूमत करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर बेगुनाह लोग इस तरह मारे जाएं और इस तरह जानों का ज़िया हो तो फिर लोग बददिल हो जाते हैं और वो फिर जो भी मिशन है किसी का या जो भी वो बात करना चाहते हैं उस पर उनका वो साथ नहीं दे सकते। अब देखना ये है, असल मसला ये है कि इतना तूल पकड़ गया है शाम का मामला और मुख्तलिफ शहरों में ये फैल गया है कि इसमें बेशुमार ग्रोह शामिल हो चुके हैं, और चूंकि वहां पे कोई हिजब इख्तलाफ नाम की चीज तो कभी भी नहीं रही शाम में, उनका सियासी निजाम इस किस्म का था तो इसलिए कोई सियासी पार्टी के तौर पर तो कोई सामने नहीं आ रहा। ग्रोह हैं, मुख्तलिफ ग्रोह हैं जो मुख्तलिफ तरीके से इस जो वहाँ पे शोरश हो रही है, जो वहाँ पे अफरा तफरी है उसमें वो शामिल हो गए हैं, जिसने हालात को मजीद पेचीदा कर दिया है। दूसरी तरफ जो शाम की हुकूमत है वो भी उनका भी कोई ऐसा होल्ड नहीं है शाम के ऊपर, और हालात के ऊपर भी उनका काबू नहीं है क्योंकि उनके अपने लोग भी बाहर निकल रहे हैं, छोड़ रहे हैं हुकूमत को और बाहर के ममालिक में पनाह ले रहे हैं। तो इसलिए मामला बहुत ही ज्यादा उलझ गया है। इसका इलाज यही है कि यक तरफा तो किसी बाहर के मुल्क को ये हक नहीं पहुंचता कि वो अपने मकासद के लिए किसी ऐसे ग्रोह को आगे करे इस अफरा तफरी को देखकर जो कि आगे चलकर उनके लिए इस खत्ते में उनके वो नुमाइंदा बन सकें या उनके लिए वो काम कर सकें। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि जिस तरह रूस है, रूस का एक किरदार है उसको इसमें शामिल हुआ है, या दूसरे ऐसे ममालिक हैं जिसमें जिनके खत्ते में इस तरह के मफादात नहीं है जिस तरह अमरीका के हैं। क्योंकि अमरीका इसराइल के बगैर तो वो सोच भी नहीं सकता मशरक वुस्ता का जो खत्ता है वो है भी, क्योंकि इसराइल उनके मफादात की हिफाजत करता है, चाहे वो सियासी मफादात हों, चाहे स्ट्रेटेजिक हों, चाहे इकतसादी, चाहे वो मजहबी हों, और कल्चरल भी, कल्चरली भी ये सारे यूरोपियन हैं, इसराइली, इनका कोई इस खत्ते के साथ ताल्लुक नहीं है। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके पड़ोस में कोई इस किस्म की हुकूमत आए जो अपनी मर्जी के साथ मामलात को चला सके तो वो अपने ग्रोह को ही आगे करेंगे। तो इसलिए इस चीज को पर नजर रखना और इस चीज को रोकना बहुत जरूरी है कि सफरा तफरी का कहीं ये फायदा ना उठाएं। तो मेरा ख्याल है कि इसका हल जो जिस तरह रूस में ने बात की और जिस तरह दूसरे मुख्तलिफ जो बाहर भी ग्रोह काम कर रहे हैं जो कि इस तशद्दुद का हिस्सा नहीं है या हम ख्याल करते हैं कि वो नहीं है और वो बातचीत की मेज के ऊपर बैठ सकते हैं, तो इसमें बेहतरीन वही हल होगा जो ईरान भी पेश करता रहा है और कुछ ऐसे दूसरे ममालिक भी हैं जो ईरान की के इस मामले में साथ हैं कि ये आपस में बातचीत करें और जो शामी हुकूमत है और जो जेन्युइन ग्रोह हैं, ये नहीं, ये वाले नहीं, एक्सट्रीमिस्ट नहीं, क्योंकि अलकायदा भी शामिल हो गया। अब अलकायदा वाले लोगों को तो हुकूमत देनी या उनकी तरफदारी करनी तो बहुत ज्यादती होगी, चूंकि जिस किस्म के उनके ख्यालात हैं, जिस किस्म के उनके नजरियात हैं, वो तो एक अनार्किस्ट हैं और वो तो एक खास बहुत ही महदूद सोच के साथ इस्लाम को आगे पेश करते हैं जो कि असल इस्लाम नहीं है। तो इसलिए वो खतरात भी ऐसे हैं जिनसे देखना होगा और परे हटना होगा। तो वो लोग, वो ग्रोह जो कि वाकई हुकूमत के तो मुखालिफ हैं लेकिन वो इसमें हिस्सेदार नहीं है जो तशद्दुद हो रहा है, उनको किसी तरीके से एक मेज पे ऊपर बिठाया जाए और फिर वो एक ऐसा फार्मूला बनाए, एक ऐसा आइन दें मुल्क में जिसमें जो इख्तदार की तकसीम है वो बेहतर तरीके से हो सके, और बजाय ये कहने के इस हुकूमत को उखेड़ फेंको या ये करो। उखेड़ फेंकने से तो हो सकता है मामला, अगर उखेड़ फेंकना मुमकिन होता तो ये बहुत पहले हो गया होता, तो वो चूंकि नहीं है तो इसलिए हुकूमत भी कोई ऐसा फार्मूला दे जिसमें, जिसको हम अंग्रेजी में मिडिल वे कहते हैं, यानी कोई दरमियानी रास्ता वो ढूंढें जिसमें ये हुकूमत भी एक स्टेजेस के ऊपर अपने निजाम बनाए और अपने पार्लियामेंट इलेक्टेड बनाए, चाहे वो आईन सबसे पहले तो दे, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आईन होना चाहिए जिसके तहत बाकी इदारे काम करेंगे और वो दूसरे ग्रोह भी बैठे हैं उसमें, ये बातचीत के जरिए इन मामलात को आगे बढ़ाएं और इसको तय करें, क्योंकि बहुत सी जगहों पर हमने देखा है कि बातचीत के जरिए मामला तय हो जाते हैं। ज़ाहिरन वो नजर ऐसे आ रहा होता है कि नामुमकिन है लेकिन वो मुमकिन हो जाता है, इसलिए कि अगर ये नहीं होगा तो जो जेन्युइन अपोजिशन है उस ध्यान रखना चाहिए कि वो बिल्कुल साइड लाइनों पे चली जाएगी और जो तकरीबकार हैं और जो तशद्दुद पसंद हैं खास तौर पे अलकायदा जैसी जालिम जमातें वो फिर आके इस सफरा तफरी से फायदा उठाएंगे।
शुक्रिया, मैं फिर आ जाऊंगा फारूक हसना साहब,
उनका भी कोई फायदा नहीं होगा।
जी मैं फिर आ जाऊंगा। प्रोफेसर आयब साहब, अभी फारूक हसना साहब कह रहे थे जो असल अपोजिशन है उसको शामिल किया जाए, उससे बातचीत की जाए। आपको मालूम होगा कि बशार असद की हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए, हत्ता उन्होंने ये कहा कि जो लोग शाम से निकल गए हैं मुखालिफीन वो आएँ मुज़ाकरात करें, उनकी पूरी तरह से सिक्योरिटी की जमानत हम देते हैं, हुकूमत देती है, उनको किसी तरह का कोई नुकसान, कोई गजंद नहीं पहुँचाई जाएगी, ना ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा, वो आएँ मेज़ पर बैठें मुज़ाकरात करें। ये बात। दूसरी बात, जिन ग्रोहों ने, जो असल ग्रुप थे, जिन लोगों ने मुज़ाकरात की बात की, आमादगी जाहिर की, जैसे माज़ अल ख़तीब, जिनको मुखालिफ ग्रोहों के इत्तेहाद का सरबरा भी कहा जाता है, उन्होंने मुज़ाकरात की आमादगी का ऐलान किया, ऐसा लगता है कि उनको किनारे कर दिया गया और नामनिहाद जो इजलास तश्कील पाया इस्तांबुल में जिसमें वज़ीर आज़म का इंतखाब किया गया उससे उनको दूर रखा गया, और माज़ अल ख़तीब उन लोगों में शामिल हैं जो इस तरह के इजलास के सख्त मुखालिफ हैं, तो क्या ये समझा जाए कि अब खुद जो शामी हुकूमत के मुखालिफ ग्रोह हैं उनमें इख्तलाफ हो गया है?
बिल्कुल बिल्कुल सही आप कहना, वो कोई किसी से भी यकजहती या यूनिटी नहीं है उनमें। कुछ ग्रुप जो हैं वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मसला जो है वो मुज़ाकरात के जरिए हल हो, लेकिन मसला सारा ये है कि अमेरिका चाहता यह है, अमेरिका उसके साथी जो है वो ऐसी हुकूमत लाना चाहते हैं सीरिया में जो उनके लिए काम करे, जो उनकी हो और उनके मतलब के लिए जद्दोजहद करे, तो वो कैसी ऐसी हुकूमत को नहीं कबूल करेंगे आसानी से कि जो उनके मफाद की हिफाजत ना करे उस इलाके में जो है। तो सारा मसला यह है कि लोग जो हैं, जो जिला वतन हुकूमत बनी, वो बनाई हुई है कॉलिशन, उसमें काफ़ी जमातें ऐसी हैं जो कि मुज़ाकरात करना चाहती हैं, और इसीलिए उन्होंने उसकी लीडरशिप को जो है वो भी तब्दील कर दिया और ऐसे आदमी को ले आया जो कि अमेरिका की जेब में हो बिल्कुल पूरी तरह से जो है। तो ये उनकी स्ट्रेटजी है, और ये भी है कि अमेरिका जो है के साथी जो है, खासकर सऊदी अरब जो है, हथियार सप्लाई कर रहा है। एक ब्लॉगर यहां पर हिगिन्स है, उसने अपने ब्लॉग में लिखा है कि उसने खुद आइडेंटिफाई किया है कि सर्टेन रॉकेट लॉन्चर्स और रॉकेट्स जो है वो क्रोएशिया ने सप्लाई किए थे, जिसकी रकम पेमेंट जो है वो सऊदी अरब ने की है, वहां से फिर वो लाए गए आपके में टर्की में, और नसरुल इस्लाम जो है, जमातुल नुसरा जो है, उसको ये दिए गए जो है। तो इस तरह से कोशिश उनकी बराबर ये जारी है कि किसी ना किसी तरह से हुकूमत को कमज़ोर किया जाए और उनके मतलब के लोग जो है वो हुकूमत में आ सकें। लेकिन ये चाहते जो हैं, इसमें सीरियन फाइटर कम है, चार जो शिद्दत पसंद जमाते हैं उसमें सीरियन कम है, बल्कि बैरूनी मुल्क से आए हुए लोग जो हैं वो शिद्दत पसंद जो है वो आके वहाँ इकट्ठा हो गए हैं जो है। अच्छा, और ये टर्की को भी सोचना चाहिए कि आज ये यहाँ लड़ रहे हैं, कल वो टर्की में भी मुसीबत क्रिएट कर सकते हैं तुर्की के लिए जो है, तो उनको भी ये सोचने की ज़रूरत है। लेकिन आज मसला ये है कि उनको कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हुई है, वो ज़रूर जाते हैं इलाकों पर, हमला करते हैं, उनके लोगों को लूट लेते हैं, उनके घरों को तबाह कर देते हैं, और ये सारा करते हैं, लेकिन वो किसी जगह को अपने कंट्रोल में नहीं ले पा रहे हैं, और उनकी उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो हुकूमत को उलट दे जो है। तो अब वो सिर्फ दहशतगर्दी, अब जो इमाम को शहीद किया उन्होंने मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते हुए, और 50 नमाजी भी उनके साथ मारे गए और 80 के करीब जख्मी हुए, ये कौन सी जद्दोजहद है और ये कौन सा इस्लाम है जिसकी कोई हिमायत दुनिया में करेगा जो है, कोई नहीं करेगा जो है।
बहुत तो शुक्रिया आपका, मैं फिर हाजिर हूंगा।
पहुंच गए हैं क्योंकि अब वो जंग में तो जीते ही रहे हैं, तो ये हरकतें कर रहे हैं।
साकिब अकबर साहब, आप देखें गुज़िश्ता दो तीन दिनों में या एक हफ्ते में अचानक कई वाकयात एक साथ उभर कर सामने आए, इस्तांबुल में इजलास, फिर अगले ही दिन हलब में कीमियावी हथियारों का इस्तेमाल, फिर दो दिन के बाद जुमेरात को दमिश्क में मस्जिद उल ईमान में धमाका, इन्हीं दिनों कुर्दों के साथ जो अब्दुल्ला अजलान की जमात है PKK, उसके साथ तुर्की की हुकूमत की मुफाहमत, और फिर अचानक इसराइल की तरफ से तुर्की से माफ़ी मांग लिया जाना, और फिर ये खबर कि वो दहशतगर्द जिन्हें तुर्की ट्रेनिंग देता है जब शाम में ज़ख्मी होते हैं तो उनका इलाज इसराइल में किया जाता है, और फिर माज अल खतीब का ऐलान कि तुर्की पूरी तरह से पर तौले हुए है शाम में फौजी मुदाखलत का। तो ये जो चार पांच वाकयात अचानक एक हफ्ते के अंदर उनमा हुए हैं, क्या आप इस पर कोई गंभीर तबसरा करना चाहेंगे?
मेरा ख्याल ये है कि ये जो इंतखाब किया है वजीर आजम का, जो जिलावतन हुकूमत बनाई गई है इस्तांबुल में, ये चूंकि कुर्द पस मंजर रखते हैं, तो एक ये जो एक तीर से ये कई शिकार करने की कोशिश की गई है। एक तो ये कि तुर्की के अंदर के कुर्दों को एक पैगाम दिया गया है कि देखें हमने शाम के अंदर भी जो है एक कुर्द पस मंजर रखने वाले आदमी को जो है वो वजीर आजम जो है वो बनाया है। तो मेरा ये ख्याल ये है कि उसके अलावा आप ये देखें कि एक ऐसा आदमी जो वहाँ के गली कूचों को भी अब नहीं जानता और जिसको याद नहीं है, वो बिल्कुल अमेरिका और उसके हवारी और हामी जो है वो ज़रा भी यानी असल शामियों को जो है वो इतना भी एतमाद उन पे करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक पार्लियामेंट का इजलास यानी इंतखाब लड़ने के लिए वो कहते हैं जी ये जो डुअल नेशनल है इसको हम नहीं इजाज़त देते कि वो MPA का भी इजलास इंतखाब लड़ सके। चे जाए कि आप जो है एक ऐसे आदमी को जो बचपन में कहीं चला गया था और वो अमेरिकन नेशनल है, उसको जो है वो ज़बरदस्ती आप उसके ऊपर शाम के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करें कि वो उसका वज़ीर आज़म हो जाए। तो मेरा ये ख्याल ये है कि इस वक्त इस खित्ते में तुर्की को एक अपर हैंड देने की कोशिश की जा रही है, और ये जो तुर्की और इसराइल को एक जाहिर ये किया जा रहा था कि इस इलाके में फलस्तीनियों के मफादात और मुसलमानों के मफादात की हामी हकूमत इस वक्त तुर्की में बरसर इकतदार आ गई है, ये जो तासुर दिया जा रहा था, ये मेरा ख्याल है उसको मजीद गहरा करने की इस लिहाज से कोशिश की गई है कि देखें ये वो हुकूमत पहली आई है जिससे इसराइल ने जनाब किसी बुनियाद पर जो है वो माफी मांग ली है। इसराइल ने माफी मांगनी है तो वो शाम के अवाम से माफी मांगे, और शाम की जो गोलान हाइट्स वगैरह अभी भी उसके कब्जे में है वो उसको खाली कर दे। इसराइल ने अगर माफी मांगनी है तो हमास की इतनी अपना हाफिज अहमद यासीन से लेके बाकी जो उसने कत्ल किए हैं उनसे माफी मांगे। इसराइल ने माफी मांगनी है तो अपना लुबनान के जो लाखों लोगों को उसने उजाड़ा है और तबाह किया है और कत्ल किया है वहां के लोगों को, वो उनसे माफी मांगे। ये दर हकीकत एक अपर हैंड जो है वो बजाहिर तुर्की की हुकूमत को देने की कोशिश की जा रही है आलम इस्लाम में कि जनाब ये बहुत ही, या खत्ते में कि ये इस वक्त बहुत ही नुमाइंदा जो है वो मफादात जो मुसलमानों के या इलाके के लोगों की जो है वो हामी जमात जो है वो इस वक्त तुर्की में बरसर इकतदार है। मेरे आपके नाजरीन को याद होगा कि इस वक्त जो अर्दगान हैं जो वजीर आजम है तुर्की के, ये इससे पहले मरहूम नजमुद्दीन अरबकान की पार्टी में शामिल थे। तो काजी हुसैन अहमद साहब हमारे जो फौत हो गए लीडर पाकिस्तान में, उन्होंने बताया था कि नजमुद्दीन अरबकान से ये जो जुदा हुए तो उन्होंने इस बात पे तबसरा किया कि ये वो अंगूर है जो अब शराब बन चुका है। यानी इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये, उनका यकीन था कि ये किसी और रास्ते पे चल पड़ा है। तो हमें ये बात उस वक्त समझ नहीं आई थी जब हमने ये पहले सुनी थी, लेकिन जूं जूं उसका अरदगान का जो किरदार सामने आ रहा है ये बहुत ही हौसला शिकन है। अभी भी असादत पार्टी का स्टांस जो है वो शाम के मसले पे और इलाके में बाकी मसलों पे जो नजमुद्दीन अरबकान की वारिस जमात समझी जाती है उनका और है, और दगान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस खत्ते में और है। उनकी अपोजिशन जो इस वक्त तुर्की के अंदर है वो और है। अवाम की अक्सरियत जो है वो रिजेक्ट कर चुकी है किसी भी तुर्की की अफवाज को जो है वो इन्वॉल्व करने के सिलसिले में सीरिया के खिलाफ। लेकिन अजीब बात यह है कि अर्दगान इस कदर स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़ता चला जा रहा है, और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही खतरनाक होगा तुर्की की आवाम को, और बाकी जो लीडरशिप है उनको आगे बढ़ने से तुर्की को रोकना पड़ेगा। तुर्की पहले भी अमेरिका से वफादारी जो है वो निभाकर उसने कोई फायदा नहीं उठाया। तो मेरा ख्याल है अब भी जो पिछले जो अदवार में अपना अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो यूरोपियन यूनियन से कहते रहे हैं कि जनाब इनको तुर्की की हुकूमत को आप
जी
अकोमोडेट करें, ये किसी और तरफ ना चली जाए। तो मेरा ख्याल ये है कि ये खेल है जो अपना बाजीगरी है जो मुख्तलिफ अंदाज से जो है वो जारी है। अगर ये सिलसिला एक दो और इकदाम ऐसे बेवकूफाना किए अर्दगान ने तो वो बिल्कुल तुर्क अवाम जो है वो उसको रिजेक्ट कर देंगे।
बहुत
और
शुक्रिया आपका, मैं
इसराइल
फिर हाजिर हूँ
ने
अगर
जो इस तरह
वक्त
का
रहा। डॉक्टर
इकदाम
अकबर साहब
इस वक्त किया है
जी
जिसके पीछे सिवाय इसके कोई और बात नहीं है कि तुर्की को जो है वो किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट की जाए और सहारा दिया जाए।
बहुत शुक्रिया। फारूक हसना साहब, बाराक ओबामा के खित्ते में मौजूदगी के दौरान ही नेतन्याहू ने अर्दोगान को फ़ोन किया और मरमरा या फ्रीडम फ्लोटिला पर जो हमला हुआ था उसके बाबत माफ़ी मांगी। बहरहाल फारूक हसना साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर नहीं है। प्रोफेसर आरिफ साहब ने अगर मेरी बात सुनी हो तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि अचानक माफ़ी मांगी इसराइल ने और तुर्की के वज़ीर आज़म अर्दोगान साहब ऐसा लगता था जैसे तैयार बैठे हों कि बस एक फ़ोन आए और हमसे माफ़ी मांगे और हम सारी बातें ख़त्म कर दें। तुर्की ने जो जहाज़ भेजा था मरमरा बहरी जहाज़ या फ्रीडम फ्लोटिला, वो इसलिए भेजा था कि गज़ा के महसूर आवाम की मदद की जाए, और इसराइल ने जारहियत की, 9 रज़ाकारों को तुर्की के शहीद किया। क्या जो इसराइल ने माफ़ी मांगी है गज़ा के महसूर आवाम का मुहासरा ख़त्म हो गया है, या तुर्की को अब न फिलिस्तीनियों की ज़रूरत है, ना अरब दुनिया की, ना इस्लामी मुल्कों की?
देखिए, ये माफ़ी जो है वो तो एक बहाना है। सारा मसला ये है कि अमेरिका उस खित्ते में इसराइल अकेला हो गया है, जो है चारों तरफ उसके जो है वहाँ इनकलाब आ रहे हैं, मजहबी अवेकनिंग जिसको कहते हैं उजागर हो रही है, लोग खड़े हो रहे हैं। इसराइल जो है वो घिरा हुआ चारों तरफ से, इसलिए इसराइल का एक दोस्त वहां पर क्रिएट करना था। अर्दन अब भी है लेकिन अर्दन के अंदर जो अवाम है वो इसराइल के खिलाफ है, तो उनको एक दोस्त को वापस लाना था। इस सिलसिले में ओबामा ने कोशिश की दोनों तरफ, एक तरफ इसराइल पर जोर डाला और दूसरी तरफ तुर्की पर जोर डाला। हालांकि तुर्की को मानने की जरूरत नहीं थी कि हम माफी नहीं मानते जब तक कि फलस्तीनों को उनके हुकूक नहीं मिल जाते हैं। अगर ये वहां कंडीशन लगा देते, ये बात रख देते, तो भाई समझ में आने वाली बात थी। आप उन्होंने माफी मांगी, आपने एक्सेप्ट कर लिया, ना फलस्तीनियों के हुकूक मिले हैं, ना उनके उनको अभी तक सेफ्टी मिली है, ना उनके हालात ठीक हुए हैं, और आपने एक्सेप्ट कर लिया। इससे जाहिर ये होता है कि तुर्की हुकूमत जो है वो पूरी तरह से अमेरिका के पंजे में है और अमेरिका जो चाहता है वो उनसे करवा लेता है। और उनके उनकी एक जो ख्वाब था तुर्की की जो नई जो हुकूमत है कि वो सुल्तनत उस्मानिया के उन तमाम मुल्कों को जो उनके अंडर थे उनको एक मरतबा फिर से इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने कंट्रोल में लाए। अच्छा, वो हो नहीं पाया उनसे, हो नहीं पा रहा है उनसे, तो उन्होंने अब ये कोशिश की चलो भाई तुर्की से उसे इसराइल से बात हो जाए जो है। लेकिन तुर्की के अवाम जो हैं उनमें ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है, बड़ी तादाद में जो है लोग, वो इसके सख्त खिलाफ हैं कि तुर्की जो है वो इसराइल से ताल्लुकात कायम करें या सीरिया के अंदर दखलंदाजी करें। तो यानी बहुत